ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कंसर्ट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही।
लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज 430 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के एनिमेशन और ग्राफिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। श्री मोदी ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं पर कहा कि आगामी वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि वेव्स पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा है और 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवोन्मेषक, निवेशक और नीति निर्माता इसमें भाग ले रहे हैं। उन्होंने वेव्स बाजार पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे नवोन्मेषकों और रचनाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय फिल्में अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रही हैं और आज ये 100 से अधिक देशों में प्रदर्शित होती हैं। उन्होंने कहा कि देश में ओटीटी क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। और इस समय सम्मेलन स्थल मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर पर हमारे संवाददाता जीवन भवसार मौजूद हैं। जीवन, अगर आज हम सम्मेलन के बारे में पूरी जानकारी आपसे जानना चाहें तो आज कौन कौन से प्रमुख सत्र आयोजित किए गए सम्मेलन में?
अच्छा, हाँ विशाल, आज सम्मेलन का पहला दिन है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सेशन से ये पूरा सम्मेलन भरा हुआ है। इस सेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हेमा मालिनी जी, मोहनलाल जी और चिरंजीवी के एक सत्र से हुई। उन्होंने उस सेशन में अपने इंडियन सिनेमा की जो हिस्ट्री है और इंडियन सिनेमा के जो बड़े बड़े पैगाम है उसके ऊपर उन्होंने बात की। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने भी अलग अलग सेशन यहाँ पे एड्रेस किए। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है मुकेश अंबानी, उन्होंने ये कहा कि अब इंडिया को जो दुनिया के लिए कंटेंट बनाना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये टारगेट दिया हुआ है कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो ज्यादातर ग्लोबल स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा इंडियन क्रिएटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। एडोब की जो सीईओ है शंतनु नारायण, उन्होंने भी एआई के ऊपर अपने विचार यहाँ पे व्यक्त किए।
जी, जी, जीवन
के जो सीईओ है नील मोहन, उन्होंने इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूब इनका क्या इक्वेशन है, ये किस तरह से काम हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने कहा।
जी धन्यवाद जीवन भवसार इस जानकारी के लिए। भारत के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में अप्रैल माह के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.6% की वृद्धि हुई। ये अब तक के सबसे अधिक 2,37,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। केंद्रीय जीएसटी संग्रह इसी माह के दौरान बढ़कर 48,634 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी बढ़कर 59,372 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सरकार ने इस वर्ष अब तक 2,56,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने नई दिल्ली में बताया कि सरकार इस वर्ष के अंत तक 3,12,00,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के लिए गेहूं की बिक्री आसान हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नए उपाय शुरू किए हैं। आयोग अब मृत्यु पंजीकरण संबंधी आंकड़े भारत के महापंजीयक से सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करेगा। इससे मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर सूचना मिल सकेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्र को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उन्होंने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की सराहना की। देश के विभिन्न भागों में गर्मी के मौसम में चलने वाली लू के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 राज्यों से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाने को कहा है। आयोग ने कहा है कि राज्यों को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बाहरी कामगारों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।